शांति। हम सबको मीठे बाबा ने कर्मों की गहन गति सुनाई है। कर्म जो इस कर्म क्षेत्र का बीज है, कर्म के आधार से ही कर्म अकर्म विकर्म और सुकर्म बने। जब आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आई, शरीर धारण किया और शरीर लेते ही कर्म शुरू हो गए। देखना, बोलना, खाना, घूमना, फिरना, चलना, ये भी तो कर्म ही है। सांस ले रहे हैं, वो भी तो कर्म है। कोई कहे मैं कर्म सन्यासी हूं, तो बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र पर कोई कर्म सन्यासी नहीं होता। हो सकता है वो भोजन न बनाता हो इसलिए कहता है मैं कर्म सन्यासी हूं, लेकिन कर्म के बिना तो हम कुछ पल भी शरीर में नहीं रह सकते। सांस ले रहे हैं, वो भी तो कर्म है। लेकिन कर्म विकर्म बन गए और उन कर्मों से विकर्म जो बने उनसे हम मुक्त हो जाएं, उसकी विधियां केवल संगम युग पर बाबा ही हम बच्चों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसकी विधियां बता रहे हैं। और जितना हम उन्हीं विधियों को अपनाते हैं उतने हमारे विकर्म पाप कर्म समाप्त होते जाते हैं। विकर्मों की शुरुआत हुई कैसे, जो इतना बड़ा बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता गया, जबकि आधा कल्प तक सतयुग और त्रेता में कर्म कर रहे थे लेकिन वो कर्म अकर्म हो रहे थे। कोई भी न श्रेष्ठ कर्म बना न विकर्म बना, क्योंकि वो संगम युग की प्रारब्ध देवी देवताओं के रूप में हमें प्राप्त होती गई वर्षे के रूप में। इसलिए जो भी कर्म किए वो सब फल से रहित थे, कर्म अकर्म बने। लेकिन जब द्वापर युग शुरू हुआ और आत्मा देह अभिमान में आई, देह धारण किया, अपने स्वरूप को भूल करके बॉडी कॉन्शियस शुरू हो गया, जो कर्म उसने किया किसी न किसी विकार के अधीन होकर के किया, इसलिए वो विकर्म बन गया। जो कर्म विकारों के अधीन होकर के किए जाते हैं, विकार कोई काम विकारी नहीं है, स्वार्थ के बस, ईर्ष्या के बस, किसी न किसी कामना के बस अगर हमने कोई भी कर्म किया तो कर्म कहीं न कहीं अपना नया खाता खोल देता है, हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। वर्तमान समय कलयुग के अंतिम छोर पर हम सब पहुंचे हैं, वापस घर चलने का समय आ गया। गाइड स्वयं आकर के हम सबको साथ ले जाएंगे। परमात्मा कहते बच्चे मैं अकेला वापस नहीं जाने वाला हूं, मैं सब बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन साथ चलने के लिए तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा। जब तक तुम वैसा नहीं बनोगे तब तक साथ नहीं चल सकते हो। कष्टमपुरी क्रॉस करना पड़ेगा, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान और योग का बल संगम पर जो बाबा से हम सबने पाया है, सीखा है, उस ज्ञान और योग बल से हम अपने आप को संपूर्ण पावन बना रहे हैं। जो भी इम्प्यूरिटी की खाद है, जो भी कर्मों का बोझ है, वो कुछ तो योग बल से परिवर्तन कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, और कुछ शारीरिक भोगना के हिसाब से हिसाब किताब चुक तो करके उस विकारों के विकर्मों के बोझ से हल्के हो रहे हैं। लेकिन बाबा एक बात विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चे विकर्म विनाश करने का हिसाब किताब चुक तो करने का समय है, अभी नया हिसाब किताब नहीं बनाना। इतने समय से बने हुए 63 जन्मों के बने हुए विकर्मों को दग्ध करने की विधियां अपनानी है, अभी इतना टेंशन रखना है कि कोई नया हिसाब किताब, कोई नया विकर्म मुझ आत्मा से न हो जाए। और उसकी एक ही विधि बाबा बताते हैं, बच्चे जैसे विकर्म की शुरुआत, पाप कर्मों की शुरुआत तभी हुई जब तुम देह अभिमान में आए, अपने आप को भूल गए, ऐसे विकर्म से बचने के लिए भी तुम्हें पहली मेहनत करनी है आत्म अभिमानी स्थिति में रहने की। जितना हो सके जब समय मिले मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं, इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं, इसका अनुभव करूं। क्योंकि कर्म इंद्रियों से ही विकर्म हुए हैं और कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो पाप कर्म बन गए हैं। अभी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, स्वराज्य अधिकारी बनकर इन कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना, ऐसा कभी न कहें चाहते तो नहीं थे, हो गया, देख लिया, बोल दिया, सुन लिया, कर लिया, सोच लिया। आजकल एक बीमारी है अधिक सोचने की, और सोचते इतना है, कई लोग नींद करते हैं, नींद आती है लेकिन अंदर सोचते रहते हैं, मैं नींद नहीं करता हूं, मेरे को नींद नहीं आती, उसका भी सोच चलते चलते उनका बीपी बढ़ जाता है, खुशी गायब हो जाती है, योग नहीं लगता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं तुम मालिक हो, अधिकारी हो, और अपनी सीट पर बैठ करके आर्डर करो। सीट से उतर करके कोई भी हमारा आर्डर मानेगा नहीं। वैसे भी अगर कोई पद होता है, पोजीशन होती है, उस सीट पर कोई होता है तो सभी कर्मचारी सभी लोग का कहना सुनते हैं, मानते हैं, मानना पड़ता भी है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने आसन सिंहासन पर बैठो, मैं आत्मा मालिक हूं, मालिकपन की स्वमान की सीट पर बैठ करके अपने मन को अपने आर्डर में चलाओ। जितनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर मन के ऊपर रूल करो, राज्य करो, उस पर कंट्रोल कर लो, तो मन और कर्मेंद्रियों का जो साथ है इस समय, जो सोचता है वही करने लगता है, कई बार तो अपने विवेक की, अपनी बुद्धि की भी नहीं सुनता है, दबाता है उसको, ठीक है हो जाएगा, सब तो कर रहे हैं, मैंने किया तो क्या हुआ। अंदर से विवेक बुद्धि मना करती है, ये नहीं करना, ये राइट नहीं है, ये श्रीमत नहीं है, ये बाबा की बात के विरुद्ध बात है, फिर भी मन अपनी चलाता है और बुद्धि को दबा करके कर्म इंद्रियों से कर्म कर बैठता है, फिर भले उसको कितना भी पश्चाताप करना पड़े। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, पहले कहते थे साकार बाबा की मुरलियों में आता है, माया जीते जगत जीत, बच्चे मन को जीता नहीं जाता। फिर बाबा ने देखा ये माया माया तो कहते हैं लेकिन मन पर ही जीत नहीं है इनकी, इसलिए मन जीते जगत जीत कहना शुरू किया अव्यक्त बाबा ने। अब मन को जीतने की विधि क्या है? युद्ध करके तो जीतना नहीं है, युद्ध से जीत करके कोई उस पर राज्य नहीं करना है, लेकिन जैसे कहा जाता ना, इसने मेरी दिल को जीत लिया, ऐसे ही बहुत स्नेह से प्यार से मन को समझा के, उससे बातें करके, उसकी खातरी करके। खातरी करना आता है? मन को खातरी करते हो कभी? अच्छे अच्छे विचार, अच्छा भोजन, बहुत शुद्ध संकल्प, खुशी के नशे के करेंगे तो मन बड़ा अच्छा भोजन खा के शक्तिशाली बन जाएगा, आपका कहना मानेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मन को दमन नहीं करो, अमन नहीं करो, उसको सुमन बना दो। मारने की जरूरत नहीं है, दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की रचना हम कर रहे हैं, उस व्यर्थ और नेगेटिव भोजन पहले बंद करो, तब आप मन के मालिक बन सकेंगे। जितना अच्छा अच्छे विचारों का भोजन, और इसीलिए हर स्टूडेंट के लिए, हर विद्यार्थी के लिए बाबा ने एक कंपल्सरी नियम बनाया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के लिए एक नियम बना दिया कि आपको कभी भी प्रातःकाल की मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली का ही चिंतन कल या परसों वरदान में एक बड़ा अच्छा शब्द था, ध्यान गया होगा, माया का जन्म कमजोरी से होता है। जो हमारे अंदर कमजोर संस्कार हैं, कमजोरियां हैं, उनसे ही माया का जन्म होता है, और वो माया हमसे विकर्म कराती है। इसलिए कोई भी कर्म वर्तमान समय विकर्म न बने, इतना अटेंशन अपने ऊपर हमें रखना है, और वो न बने उसके लिए अभ्यास करना है, मैं आत्मा मालिक हूं। बैठ जाओ अपने भ्रकुटी आसन पर। देखो, बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी राज दरबार लगाई, ऐसे अपनी दरबार लगाओ, बात करो, आंखें मुख कान हाथ पांव जहां भी इधर उधर भटकते हैं उनसे बातें करो। बाबा ने तो सबसे पहले मन रूपी वजीर को कंट्रोल किया, कहता था, हे मन वजीर, तू मेरा है, मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता है। बाबा की प्रवेशता, शिव बाबा की प्रवेशता 1936 में होती है, और 1932 की डायरी बाबा ने लिखी, अपने हाथों से लिखी, वो मैंने पढ़ी, टाइप किया। 1932 में बाबा ने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा मालिक हूं, मन मेरा वजीर है, ये आंखें कान नाक मुख कान ये मेरे कर्मचारी हैं। जब भी बाबा अपनी दरबार लगाते थे तो एक एक से हाल चाल पूछते थे, तुम्हारी कारोबार ठीक चल रही है, तुमको क्या चाहिए, बातें करते थे। अपने आप से बातें करना, अपने आप को समझाना, उसकी सुनना, और उसको जो चाहिए उसी अनुसार उसको देना, तो हम सब बाबा के बच्चे पहले मन जीत बने, और कर्म इंद्रियों पर जीत हो जाएगी तो कोई कर्म अभी भी कर्म नहीं बनेगा। दो प्रकार से बन रहे हैं, अभी भी बन जाते हैं कई कई ब्राह्मणों से, इसलिए योग नहीं लगता है, खुशी नहीं होती है, उन्नति का अनुभव नहीं होता है, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। कारण तो होगा ना कुछ, और वो कारण यही है कि कहीं ना कहीं देह मान में आकर के आत्मा कोई न कोई विकर्म कर लेती है। एक तरफ किसी पर भी अगर जरा भी प्रभावित हो गई प्रभावित होना तो आजकल बहुत जल्दी लोग अपना प्रभाव डाल देते हैं किसी न किसी रूप से। कोई अपनी वाणी का प्रभाव डाल देता है, कोई अपने हाथ की सफाई का प्रभाव डाल देता है, कोई अपने चलन का प्रभाव डाल देता है, अपने गुणों का, अपने सहयोग का, अपनी विशेषताओं का प्रभाव डाल देता है। हम सब बाबा के बच्चे एक अटेंशन रखें, किसी भी देहधारी पर अब मुझे प्रभावित नहीं होना है, चाहे जितना अच्छा चमत्कार कर रहा हो, चाहे जितनी अच्छी प्राप्तियां करा हो रहा कलयुग के अंदर, लेकिन कोई भी आत्मा अब मुझ आत्मा पर अपना प्रभाव न डाले। क्योंकि अगर किसी का प्रभाव पड़ गया तो दबाव, लगाव, झुकाव, कई प्रकार के विकर्म वहां शुरू हो जाते हैं। इसलिए किसी पर भी अब मुझे देहधारी पर, जो आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं, जन्म मरण के चक्र में आई हैं, बाबा तो यहां तक कहते थे बच्चे तुम मम्मा बाबा पर भी प्रभावित नहीं होना, इनको भी याद नहीं करना, ये भी तुम्हारे जैसे देहधारी हैं। एक के ऊपर प्रभावित होना, एक वृत्ता, एक बाबा, दूसरा न कोई। जो आत्माएं केवल एक से सच्चे प्यार का संबंध बना करके रहती हैं, उसको ही सर्वस्व अपना समझ करके उसकी श्रीमत का यथार्थ पालन करती हैं, विधि पूर्वक अमृत वेले से रात तक दिनचर्या व्यतीत करती हैं, वो आत्माएं विकर्मों से बच जाती हैं, उनसे होते नहीं हैं। क्योंकि श्रीमत की लकीर जहां पर भी संकल्प से भी उल्लंघन हुई, कोई आत्मा के प्रभाव में आ गए, ये बड़ा अच्छा भाई है, ये बड़ी अच्छी बहन है, वो अच्छाई भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, और उसके कारण उसे लेना देना, उठना बैठना, बातें करना, और धीरे धीरे वहां पर कोई ना कोई गलत विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं और वो विकर्म बना देती हैं। दूसरी एक बात है, कई बार चलते चलते कहीं ना कहीं टकराव ले लेते हैं, संस्कार मिलन नहीं होता, कोई आगे बढ़ता है तो लगता है कि ये तो कल का आया हुआ, इतना आगे बढ़ गया, मैं तो इससे पुराना हूं, मैं अनुभवी हूं, उसको बदनाम कैसे करूं, कैसे उसको नीचा गिराऊं। कहीं न कहीं से अगर वैर विरोध टकराव की स्थिति बना ली तो वो भी एक नया हिसाब किताब बन जाएगा, कहीं ना कहीं पाप हो जाएगा, सोचने में, बोलने में, करने में। उस आत्मा के प्रति घृणा और नफरत की भावना भी एक नया हिसाब किताब बनाती है। इसलिए पहला अटेंशन ये देना है, हम आए हैं बाबा के पास आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने, बाबा के समान बन करके बाबा के साथ वापस घर चलने, कहीं अभी बंधन न बन जाए, नया बंधन न बन जाए, पुराने तो चुप तो करना है। बाबा की परसों के साकार मुरली पर ध्यान दिया होगा बच्चे, एक्यूरेट याद किसको कहा जाता है, उस एक्यूरेट याद से तुम्हें करंट मिलती है और वो करंट विकर्मों का नाश करती है। साकार बाबा की मुरलियों में विकर्म विनाश की कई अच्छी अच्छी विधियां समय पर समय हम सबको मिलती हैं। अटेंशन देते हैं कोई कोई, लेकिन कोई ऐसे ही सुन लेते हैं, कथा की तरह सुन करके चले जाते हैं। लेकिन जब ध्यान जाता है कि बाबा कितना एक्यूरेट बात बता रहे हैं कि बच्चे एक्यूरेट याद किसको कहा जाता है, तीन बातें बाबा ने कही। पहले धैर्यता, फिर गंभीरता, फिर समझ। जो बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हैं तो बड़े शांत धैर्यवत होकर के मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं समझ करके बहुत गंभीर रूप से, गंभीरता ये नहीं एकदम सूखापन अनुभव। कई बार बाबा कहते हैं मेरे बच्चे जो है ना सूखे योगी हो गए हैं, रमणीकता नहीं है। एक दिन की बात मैं आपको रमणीक सुना देता हूं। हम लोग योग करते थे तो हमारी दीदी मनमोहिनी योग कराती थी, खुद ही सामने बैठ करके, छोटा ही सभा छोटी होती थी तो बहुत शक्तिशाली याद में बैठती थी, दृष्टि देती थी, लेकिन उनकी याद में वो नयन उनके गीले हो जाते थे एकदम, ऐसे जैसे कोई प्यार में खो जाता है समा जाता है। तो एक दिन मुझे बुलाया अपने पास, कहता योग तो तुम बड़ा अच्छा करता है, कैसे करता है? तो मैंने ऐसे कह दिया, दीदी जैसे सब करते ऐसे मैं भी करता हूं। बोला सब कैसे करते हैं? तो कहती योग में चेहरे पर उदासी क्यों आ जाती है, सूखा सूखा चेहरा क्यों दिखाई देता है? तुम लोग गोपी बन करके योग किया करो, उद्धव बन करके नहीं किया करो। अब गोपी और उद्धव की कहानी हमें नहीं मालूम थी। कहती है गोपियां भगवान के साथ डांस करती थी, उसके साथ छेड़खानी करती थी, प्यार करती थी, बातें करती थी, और उस रमणीकता से उसको याद करती थी, उसके प्यार में खो जाती थी, शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, मुरली पर दीवानी थी। एक जगह मुरली बज रही है, भागे आवाज सुनते ही, वो रस था, वो प्यार था, वो योग यथार्थ है। और उद्धव समझता था अरे भगवान इतना बड़ी हस्ती, इसके साथ ये लोग इतना क्या कर रही हैं? उनको गुस्सा आता था, नॉलेजफुल था, ज्ञानी था, समझदार था, वो उस साधारण रूप में वो नहीं देख सकता था कि हंसे बहले मटकी फुड़वाएं ये करें वो करें, तो उसको बड़ा खराब लगता था, बड़ा सूखा योगी एकदम ज्ञानी था। तो दीदी ने कहा तुम लोग उद्धव की तरह योग नहीं किया करो, बहुत प्यार से गोपी बन करके मिलन मनाओ, प्यार से बातें करो, उसमें भी गंभीरता जरूरी है अंदर की, आत्मा बिल्कुल गंभीर होकर के। बाबा को यथार्थ पहचानते हैं, ऐसे नहीं कोई अलबेले होकर के जिसने जो कह दिया उसको हमने भगवान मान करके उसको याद करना शुरू कर दिया, नॉलेजफुल हैं। बाबा को नाम रूप गुण कर्तव्य धाम सब तरह से पहचान करके याद करते हैं, समझ से याद करते हैं, लेकिन उसके अंदर बाबा ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था, जो बच्चे मुझे बहुत प्यार से याद करते हैं उन्हें मैं स्पेशल सकास देता हूं, वो सकास बाबा की मिले, वो करंट मिले, उस करंट से उस सकास से विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होते हैं तो उसकी कुछ निशानियां भी दिखाई देनी चाहिए। हम 10 साल से 15 साल से 20 साल से 50 साल से योग कर रहे हैं, अगर हमारे संस्कारों में वो दिव्यता वो सरलता वो संस्कारों में मधुरता मिलनसारिता नम्रता नहीं आई तो क्या हम ये कह सकते हैं हमारे विकर्म विनाश हो गए? विकर्म विनाश की निशानी ही ये है कि आत्मा बहुत हल्की हो जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर जाता है ना किसी के ऊपर से, कर्ज हो बोझ हो उतार दिया जाए उसे ले लिया जाए तो कितना हल्कापन आ जाता है, कितनी आंतरिक खुशी रहती है, हल्कापन खुशी ऐसे जैसे उड़ रहा है जमीन पर पांव नहीं। हम सब अगर यथार्थ एक्यूरेट बाबा को याद कर रहे हैं और बाबा की करंट आ रही है तो करंट वो सकास आत्मा को बहुत हल्का बना देती, लाइट कर देती है, वो अंदर की खुशी दिखाई देती है, चेहरे पर भी वो रौनक दिखाई देती है। उसके विचारधाराएं बहुत पवित्र और शुद्ध होने के कारण उसका आभा मंडल भी बहुत बढ़िया हो जाता है। उसके समीप आने वाली आत्माओं को भी उसकी दृष्टि से, उसके हाव भाव से, उसके वाइब्रेशन से बहुत अच्छे सुखद अनुभव होते हैं। उनके समीप लोग आना चाहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हम अपनी दादियों को देखते थे, हमारी एक दादी थी, नाम तो सुना होगा आपने, परदादी कहते थे हम निर्मल शांता दादी को, सब दादियों की बड़ी निर्मल शांता दादी परदादी थी। वो जब पांडव भवन में रहती थी तो लास्ट दिनों में कुछ समय पांडव भवन में उनको व्हील चेयर पर ही घुमाते थे पांडव भवन में, और जब वो कमरे से निकलते थे तो चारों तरफ से लोग उनको देखने के लिए, उनके वाइब्रेशन लेने के लिए घेर लेते थे, ऐसे घेरा जैसे बना लेते थे। उनकी प्यूटी, उनका स्नेह, उनकी निश्चल भावना, वो पावन आत्मा जो विक्रमों पर जीत प्राप्त कर ले, उसके वाइब्रेशन ऐसे थे जो लोग उनके दर्शन करना चाहते थे, उनसे दो शब्द सुनना चाहते थे, उनकी दृष्टि लेना चाहते थे। ये विक्रम विनाश की बहुत अच्छी स्टेज है। हम गए, हमारे विक्रम विनाश हो गए, अभी मेरे से कोई विक्रम नहीं हो रहा है। बाबा कहता है जिस दिन पूरे विक्रम विनाश हो जाएंगे ना, इस शरीर भी नहीं रहेगा, आत्मा एकदम पावन बन के उड़ेगी। हम सब वो अभ्यास करें योग में, बाबा के प्यार में समाने का, उसकी याद में खो जाएं, तो ये विकर्म विनाश होंगे और आत्मा संपूर्ण पवित्र स्वच्छ बनती जाएगी, निर्मल हो जाएगी। दूसरी एक विधि भी है, कई बार ऐसा योग नहीं लगता, कई बहुत कड़े हिसाब किताब हैं, बहुत कुछ किया होगा हम लोगों ने पिछले जन्मों में। जब शासन मिलता है तो शासन का कभी कभी दुरुपयोग भी होता है, तो द्वापर युग में विकारों के अधीन होकर के शासन मिला, राजाई मिली, और राजाओं ने कितने पाप किए होंगे, विकर्म किए होंगे, दूसरों को सताया होगा, किसी न किसी रूप में अगर कुछ किया, कोई ऐसा कर्म किया है तो बहुत कड़ा हिसाब किताब, बहुत बड़ा विकर्म बनता गया, और अंत समय में हम बैठते हैं बाबा को याद करने तो विकर्मों का बोझ वो योग की गहन अनुभूति करने नहीं देता, योग लगने नहीं देता। बैठते हैं बेचारे, कहते क्या को योग ही नहीं लगता, इधर भटक जाती उधर भटक जाते, कहीं तो इतना अंदर क्या योग में बैठूं, और तूफान आते हैं। बाबा कहता बच्चे घबराओ नहीं, प्रैक्टिस नहीं छोड़ो, अभ्यास करते चलो, एक न एक दिन अच्छा अनुभव हो जाएगा। लेकिन दूसरी विधि यह है कि कभी भी श्रेष्ठ संग, पढ़ाई, ब्रह्मा भोजन, जो हमारे यज्ञ के कई नियम हैं जो हमें बहुत मदद करते हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में, उनके साथ रहते रहते भी आत्मा पावन बन सकती है। संग का रंग लगता है, अच्छे लोगों का संग, जैसे बुरे का संग लगता है, कोई आसराबी के साथ बैठे, कोई ऐसे पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, ईर्ष्या द्वेष वाले चिंतन में रहने वाले के संग बैठ जाओ, क्या होगा, धीरे 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 वो भी भरमरी की तरह भू 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 करके अपना संग का रंग लगा देगा। बाबा कहता उस संग से तो बचाओ अपने आप, संग तारे कुसंग डुबोए, ऐसे संग से जो कुसंग है, बुरा संग है, उस संग से बचाओ। लेकिन जहां पर आपकी उन्नति है, जहां से आपको कुछ प्राप्ति हो रही है, उस अच्छे संग में उठना बैठना, उस वातावरण में जाना। कई लोग लॉकडाउन के अंदर 2 साल की प्रैक्टिस के अनुसार लाख हो गए अपने घरों में, अभी भी सेंटर पर ही नहीं जाते, संग नहीं मिलता अच्छा, परिवार नहीं मिलता, बाबा का स्थान नहीं मिलता, बहनों का प्यार उनके द्वारा ब्रह्मा भोजन टोली नहीं मिलती, आत्मा पावन कैसे बनेगी, विकर्म कैसे विनाश होंगे। इसलिए सबको ध्यान देना चाहिए। कोई कारण था तब वो रोका गया, भाई क्लास में नहीं आना, अभी वो कारण खत्म हो गया, लेकिन बहानेबाजी का कारण फिर से शुरू हो गया। इसलिए कोई भी ब्राह्मण आत्मा को अगर संपूर्ण पावन बनना है, विकर्मों को समाप्त करना है, तो श्रेष्ठ संग से अपने को किनारा नहीं करना, संगठन में जाना, बैठना, एक दूसरे से सोन्नति के बारे में चिंतन करना, अनुभव सुनना, मुरली सुनना, क्लास में बैठना, इससे भी धीरे धीरे उस संग का रंग आत्मा को विक्रमाजीत बनाता है, विकर्मों से मुक्त कर देता है। बहुत अच्छा मिसाल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक मूर्ति जो है, एक मूर्तिकार गढ़ता है, तैयार करता है, एक देवी देवताओं की मूर्ति जो बनती है, एक पत्थर को कितना तराशते हैं, कितना उसको छेनी हथौड़ी से ठोकते हैं, कट करते हैं, फिर मूर्ति तैयार होती है, पूजनीय बनती है। और दूसरी भी एक मूर्ति बन जाती है जो सागर में, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, सागर के अंदर जो पत्थर होते हैं, वो पत्थर सागर के पानी की लहरों के साथ साथ ऊपर आते, नीचे जाते, टकराते हैं बार बार, तो टकराते टकराते आपस में एक दूसरे के साथ घिसते घिसते वो इतने चिकने हो जाते हैं, जो शालिग्राम के रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। ये संग के रंग का प्रभाव। एक जगह मैं गया था, मॉरिशियस में एक स्थान है, तो वहां हजारों ऐसे ढेर लगा था शालिग्राम का, छोटे छोटे, बहुत सुंदर लग रहे थे, चिकने चिकने एकदम। फिर जब सागर के पास ले गए तो कहा देखो कैसे शिवलिंग, ये शालिग्राम तैयार हुए हैं, कितने छोटे छोटे पत्थर बह करके ऊपर तक आते थे पानी की लहरों में, और फिर लहराते लहराते फिर नीचे चले जाते थे, फिर आते थे फिर नीचे जाते थे, और बार बार रगड़ खाते खाते वो इतने सुंदर चिकने बन गए, जो लोग उनको मंदिरों में ला करके शालिग्राम के रूप में पूज रहे हैं। तो ऐसे शालिग्राम तो हम बन सकते हैं ना, योग नहीं लगता है, क्या करूं, मजा नहीं आता है, नहीं लगता है, बाबा कहता है क्यों टेंशन लेते हो, बिंदु बिंदु कह करके कई इतना बोर हो जाते हैं, जो बात मत पूछो, बिंदु रूप स्टेज नहीं बनती, क्या करूं मैं, बाबा कहता है ये सोच सोच करके भारी क्यों होते हो, अरे बाबा से बहुत प्यार से रू रियान करो, बातें करो, पिकनिक करो बाबा के साथ, मनोरंजन के रूप में योग करो, इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, भाग्य विधाता ने इतना ऊंचा भाग्य बनाया है, भाग्य का चिंतन करो, प्राप्तियों का चिंतन करो, ज्ञान के खजाने का चिंतन करो। उस श्रेष्ठ चिंतन में रहते रहते आत्मा अपने आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएगी, संस्कार धीरे धीरे बदल जाएंगे, टाइम लग सकता है, उससे जल्दी हो जाएगा, बीज रूप स्टेज अगर बन गए तो जल्दी आत्मा पावन बन जाएगी, विकर्म विनाश होंगे। और अगर वो रूप नहीं बन पा रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि हम पावन बनेंगे ही नहीं, हर एक आत्मा को बाबा अपना समान पावन बना करके साथ ले जाएगा। तीसरा एक रास्ता है और बाबा के पास है, कहता मानो न मानो मैं तो ले जाऊंगा तुम्हें पावन बना के, वो फिर है सजाऊ का। इसलिए कई बार बाबा कहता है अगर मेरे सामने कोई मेरा बच्चा सजा खाएगा तो मुझे भी इससे नीचे करना पड़ेगा, इसलिए वो दृश्य न देखना पड़े। हम सब बाबा के बच्चों, इस समय संगम पर कोई भी हिसाब किताब नया न बने, और जो बने हैं फुल अटेंशन दे करके, क्योंकि बने हैं तो बुद्धि जाती है, और विशेष करके जब हम याद में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, इतनी अच्छी सभा में बैठते हैं, अगर कहीं बंधन होगा बुद्धि वहीं पर चली जाएगी, खींचेगी, रस्सी जैसे बंधी हुई है, और वो रस्सी अपनी तरफ आत्मा को ऐसे खींच के ले जाती है। यहां पूरा एक घंटे का क्लास होने के बाद एक बात भी उनकी बुद्धि में नहीं ठहरती, क्या हुआ। एक घंटा योग करने के बाद भी कोई अनुभव नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। यथार्थ योग है, उसकी निशानी क्या होगी? जैसे अगर आप कोई ऊंची पहाड़ी पर जा रहे हैं तो पहाड़ी की जो ठंडक है, वहां की जो शीतल हवाएं हैं, उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते वो आपको अनुभव होने लगेंगी। आप एक गर्म वातावरण से उस शीतल वातावरण में चले गए तो वो दे नहीं रहा है, लेकिन वहां के वातावरण का प्रभाव आपको अपने प्रभाव में ला रहा है, आपको शीतलता का अनुभव हो रहा है। झरने के आगे चले गए, सागर के किनारे चले गए, उसकी लहरें, उसकी अनुभूतियां आत्मा को होने लगती हैं। ऐसे ही अगर हम प्यार के सागर के समीप पहुंच गए, सुख के सागर के समीप पहुंच गए, मैं तो कई बार कहता हूं भाई एक जैसा योग क्यों करते हो जो बोर हो जाते हो। कई लोग, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर का बच्चा हूं, बस सोचते सोचते कि अब क्या सोचूं, पूरा हो गया योग। वैरायटी है, नवीनता है, कितना अच्छे ढंग से बाबा इतनी योग की गहरी गहरी बातें सुना रहा है। मंथन करो, मनन चिंतन करो, फिर उस स्वरूप में स्थित होकर के बाबा से प्यार से बातें करो। आत्मा के 7 गुण हैं और 7 गुणों के अलग अलग अनुभव हैं। कभी ज्ञान स्वरूप स्थिति है, ज्ञान का मनन चिंतन है, ज्ञान सागर के द्वारा कितना सुंदर ज्ञान मिला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, 3 कालों का, 3 लोकों का ज्ञान, अपने पुनर्जन्म का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। अरे ज्ञान सागर ने एक एक बच्चे को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके दी है। कितना दिया है अगर चिंतन तो करो, कितना नशा चढ़ता है। मेरे पास कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है, बाहर का ज्ञान मैंने पढ़ा नहीं है, किताबें भी नहीं पढ़ी है, लेकिन 50 साल बाबा की मुरलियां ही पढ़ी है और कुछ नहीं पढ़ा है। और कभी कभी ऐसा रूहानी नशा चढ़ता है, बाबा तूने तो उस दिन कहा ना, फूड मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सब प्रकार की मिनिस्ट्री, इंजीनियरिंग, सब कुछ, साइंस, सब पढ़ा दिया बाबा ने। एक एक बात में अपने बच्चों को अपने समान नॉलेज फुल बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया। हम सब बाबा की मुरलियों का अच्छा अध्ययन करें, ज्ञान सागर के ज्ञान की लहरों में लहराना सीख जाएं, वो लहराते लहराते आत्मा पावन बन जाएगी, अपने आप व्यर्थ संकल्प बंद होंगे, कोई भी संस्कारों की जो कड़े संस्कार बने उसका कारण क्या है, पहले चिंतन में बात आई, पहले संकल्प में आई, फिर संकल्प से वाणी तक आई, और संकल्प और वाणी का प्रभाव कर्म पर पड़ा, कर्म कर लिया, और कोई भी कर्म जब बार बार किया तो उसका कड़ा संस्कार बन गया। कहते क्या करूं, मेरी आदत ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं चाहता नहीं हूं मेरे से हो जाता है, मेरी नेचर ही ऐसी है। नेचर बनाई किसने? हमने सोचा, हमने उस पर चिंतन किया, उसका वर्णन कर लिया, और फिर वो बार बार कर्म कर लिया, वो संस्कार बन गया। आज कितना समय से ज्ञान और योग की क्लासेज हम लेते हैं, लेकिन अभी तक भी जो दृष्टि की पवित्रता है, वृत्तियों की शुद्धता है, बोल की मधुरता है, स्वभाव की सरलता है, आइए चेक करना। अगर नहीं आई है, माना मेरा ज्ञान केवल वर्णन तक है, सुनने सुनाने तक है, क्लास करने कराने तक है, प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं है। आत्मा में अगर दिव्यता नहीं आई, अगर अलौकिकता नहीं आई, अगर दृष्टि की शुद्धता पवित्रता नहीं आई तो ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का सुविधन, ज्ञान का स्वरूप कैसे कहेंगे? तो कम से कम इस पर विचार करना चाहिए, आपस में राय करनी चाहिए, अंदर अंदर विचार करके कि ज्ञान सागर की, ज्ञान की लहरों से मैं आत्मा लहराती हूं, रोज मुरली का श्रवण करती हूं, उस पर चिंतन करती हूं, फिर आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी तू आत्मा जो भगवान को प्रिय है, ऐसी ज्ञानी तू आत्मा मैं क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बनी, चिंतन करो कभी ज्ञान स्वरूप बन करके, कभी पवित्र स्वरूप बन करके, पवित्रता का सागर मेरा बाबा, मैं उसकी संतान, कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल, पवित्र, कोई देह संबंध का बंधन नहीं, नयन कमल, मुख कमल, कर्ण कमल, ये सब कमल के समान न्यारे और प्यारे बन गए, पवित्र स्वरूप होके पवित्रता के सागर की किरणें लो। कभी शांति के सागर से अपने जो सांसें चल रही हैं, जो पल्स चल रही हैं, उस पर ध्यान दो, कितनी नॉर्मल है, एक रस है, ज्यादा फास्ट नहीं है, ज्यादा स्लो नहीं है। कभी प्रेम स्वरूप बन करके दिल में मेरा दिलवाला बसा हुआ है, एक बाबा के सिवाय और कोई दिल में आत्मा न किसी के रूप पर आकर्षित है, न किसी के रुपये पर आकर्षित है, दिल बड़ी जल्दी भटक जाती है, या तो किसी के देह के रूप पर या किसी के पैसे पर भटक गई। इसलिए हम सब कभी प्रेम स्वरूप होकर के प्यार के सागर में दिलवाला की याद में खो जाएं, कभी सुख स्वरूप बन करके सुख का अनुभव करें, अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों से परे है, जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं उस सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव होने लगता है। कभी आनंद स्वरूप का अनुभव करें, जो प्राप्तियां हुई सुख से भी ऊपर की प्राप्तियां, सुख के भेंट में तो कभी दुख भी आ गया, आनंद की भेंट में क्या है? कहते हैं योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है, उस परम आनंद की अनुभूति जो आत्मा और परमात्मा के मिलन में अनुभव होती है, उस परमानंद की अनुभूति में हम खो जाएं, उससे हार्मोन्स हमारे बड़े अच्छे हो जाएंगे शरीर के। कभी शक्ति स्वरूप बन करके सर्वशक्तिमान बाबा की किरणें सर्व शक्तियों के रूप में मेरे ऊपर आ रही हैं, वैरायटी है, नवीनता है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चेंज करने का, भिन्न भिन्न रीति से अगर वैरायटी बाबा की याद में हम रहते हैं तो कभी थकेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे, याद एक्यूरेट हो जाएगी, किसी न किसी गुण में स्थित होकर के उस गुणों के सागर, गुणों के भंडार से कनेक्शन जोड़े, कनेक्शन जुटेगा, करंट आएगी, कनेक्शन ढीला है, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, मूल कनेक्शन है, कनेक्शन अगर जरा भी कहीं लूज हो जाए, थोड़ा भी, या कहीं ज्यादा लोड आ जाए तो कहते हैं फ्यूज उड़ गया, लाइट चली गई। अगर बाबा की लाइट नहीं मिल रही है, करंट नहीं मिल रही है, इसका मतलब है या तो अपने ऊपर लोड ले लिया है। बाबा कहते हैं लोड सबसे बड़ा कौन सा है? मेरे मेरे का लोड, मेरी जवाबदारी, मेरी सेवाएं, मेरी सेवा, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, तो ये मेरे मेरे का बोझ जो है आत्मा को योग लगने नहीं देता। इसलिए सब बाबा के बच्चे हैं, जब बाबा को पहचाना है, अरे शिव बाबा के ऊपर क्यों नहीं बलि चढ़ जाओ, बाबा तू बैठा है मुझे क्या करना। शिवरात्रि पर आए हो ना सभी, बाबा की 87 शिव जयंती हम मना रहे हैं, तो सब बाबा के बच्चे, तू मेरा संसार है, जहां भी मेरा है बाबा तू बैठा है, तुम जान ये सब तेरा है, ये सब तेरा है, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। करंट अपने आप आएगी, कनेक्शन जुटेगा। लेकिन जहां पर भी समझ लिया क्या करूं, मेरा संस्कार है, मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है, कई आत्माओं को यह भी बहुत मेरापन मैंपन आता है, जो बहुत जल्दी या तो ऊपर उठ जाते हैं और या तो एकदम नीचे चले जाते हैं। ऊपर उठे तो अहम आ गया, मेरे जैसा योगी कोई नहीं है, मेरा जैसा अनुभव किसी को नहीं है, मैं बड़ा अच्छा अनुभवी हूं, मैं बहुत बड़ा योगी हूं, मेरे संकल्प सिद्ध होते हैं, सोच लेता हूं हो जाता है, अहंकार आ जाता है व्यक्ति को। और दूसरी तरफ अगर नहीं अहंकार आया, मैं क्या करूं, मेरा तो कोई पूछता नहीं है, मेरा तो योग ही ठीक नहीं, शायद मेरा भाग्य ऐसा है, ड्रामा ही ऐसा है मेरे लिए, निराशा, उदासी, दिल से कश्ती। बाबा कहता है इसको मैं को मारो, इस मेरे मेरेपन को मेरे पर समर्पित कर दो, तुम मेरे बच्चे बिल्कुल लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ। बाबा बैठा है, सब ठीक करेगा। जब इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया है, उस ज्ञान दाता के ज्ञान को यथार्थ समझ लिया है, तो न कल की चिंता है न काल की चिंता है। कल क्या होगा बोलो, कल क्या होगा? बहुत अच्छे से अच्छा होगा। अगर महाविनाश भी होगा ना, पानी नहीं मिलेगा तो भी अच्छा होगा, क्योंकि ये कलयुग को अभी छुट्टी दे रहे हैं हम सब, ये चलने वाला नहीं है अधिक समय, कितने भी प्लान कर लो। भगवान का प्लान अलग है, कहता है ना, नर चाहत कुछ और भई कुछ और ही की और। नर क्या चाह रहा है और भगवान क्या चाहता है, भगवान इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आया है, और परिवर्तन के पहले अपने बच्चों का परिवर्तन चाहता है। मेरे बच्चे बदल जाएंगे, ये सब पावन बने, दिव्य गुणधारी बने, अपनी नेचर पर ये विजयी बन जाए, ये नेचर अपने आप साथी बन जाएगी। जिस नेचर को हम परिवर्तन करने के लिए इतने सब संकल्प कर रहे हैं, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब पांचों तत्वों की जो नेचर प्रकृति है, वो प्रकृतिपति आत्मा के अधीन आ जाएगी। लेकिन जब हम अपनी प्रकृति पर, अपने संस्कारों पर, अपने स्वभाव वाली नेचर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। योगी वो है जिसने अपनी नेचर पर विजय प्राप्त की है। ऐसे नहीं क्या करूं, मेरी नेचर है बोलना, हंसना, खाना, किसी की बात को कट कर देना, जोश में आ जाना। बाबा कहता इस नेचर का परिवर्तन करो, ये नेचर तुम्हारी नेचुरल नहीं है, तुम्हारी नेचर तो बहुत पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, तुम सतयुग की नेचर वाली देवी देवताओं की आत्माएं हो, तुम लेने वाले देवता नहीं हो, तुम तो देने वाले देवता हो, वो नेचर देखो अपनी, मुझे क्या चाहिए किसी से। जिस दिन वो नेचर नेचुरल बन गई, जिस दिन आत्मअभिमानी स्थिति में रहने की नेचर नेचुरल बन गई, उस दिन ये नेचर जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश सब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, सब हमको साथ देंगे, सहयोग देंगे। और जब तक ये नेचर नहीं बदली है, उस नेचर को बचाने के कितने प्रयास किए जाएं, वो कहीं ना कहीं दुख देगी, कहीं ना कहीं धोखा देगी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को योगी बनाया, राजयोगी, और योग के प्रयोग करके हमें अपनी नेचर पर कंट्रोल करना, प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत बनने के लिए कर्म इंद्रिय जीत बनना है। जितना कर्म इंद्रिय जीत बनेंगे, उतना विकर्मों पर विजय हो जाएगी, और विक्रमाजीत विक्रमों पर जीत प्राप्त करने वाली आत्मा प्रकृति जीत बनेगी। और जब प्रकृति जीत बन जाएगी, तो बाबा कहता आधा कल्प के लिए ये प्रकृति तुम्हारी सेवक बनेगी, तुम्हारे आर्डर प्रमाण चलेगी। मन आधा घंटा बिल्कुल अचल होकर के अगर बैठो तो योग कराऊंगा मैं। बैठेंगे सभी? बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, जिनको उठना है भले उठ जाओ अभी, आधा घंटा बीच में कोई नहीं उठेगा। नमस्कार करना है।
ओम शांति। अभी आधा घंटा यही योग रहेगा, लेकिन जो अभी तक शांतिवन आए हैं और ईश्वरीय सौगात नहीं ली है, वही भाई बहने अभी उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे, वहां आप सभी को सौगात मिलेगी जिन्होंने सौगात नहीं ली है। टीचर्स बहनों के लिए आज रात को 8:15 बजे ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1 में मीटिंग रखी गई है, और बिजनेस इंडस्ट्री विंग की मीटिंग भी ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 4 में रखी गई है 8:30 बजे। सभी भाई बहने बैठेंगे, जिन्होंने सौगात नहीं ली है वही जाएंगे, बाकी 8 बजे तक यहाँ योग रहेगा। योग के पश्चात डायमंड हॉल के सभी सेवाधारी भाई बहने और जोधपुर के सभी भाई बहने यहीं पर इसी हॉल में रुकेंगे। सभी भाई बहने अभी बैठेंगे और प्यारे बाबा की पावरफुल याद में रहेंगे। आदरणीय भ्राता जी हम सबको योग कराएंगे।
योग के लिए 4 प्रकार की एकाग्रता। जिस स्थान पर बैठे हैं शरीर को भी एकाग्र कर लो, जिस बैठक में बैठना चाहो, बहुत आराम की मुद्रा में। पहली है शरीर की एकाग्रता, हलचल ना हो शरीर में, जिस आराम की स्थिति में बैठ सकते हो बैठो, अलबेला नहीं, अलर्ट होकर के। दूसरी एकाग्रता है अपने संकल्पों की, मन की एकाग्रता। तीसरी है बुद्धि की, बुद्धि से एक दृश्य इमर्ज करो, संकल्प को वहां टिका दो। और चौथी एकाग्रता है भावनाओं की, दिल की। जब शरीर की एकाग्रता बन जाती है, हलचल बंद हो जाती है, आत्मा इस शरीर के अंदर भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए स्वरूप को अनुभव करती है। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं लाइट माइट स्वरूप हूं। बुद्धि से उस दृश्य को देखो। अपने स्वस्वरूप का दर्शन करो। स्वधर्म में स्थित हो जाओ। फिर भावनाओं के आधार से बाबा को बहुत प्यार से निमंत्रण दो, बुलाओ बाबा को अपने पास, बाबा मुझे आपकी करंट चाहिए, आप पतित पावन शांति के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तियों के भंडार, मेरे बाबा मुझे इसका अनुभव चाहिए। बिल्कुल समीप कंबाइंड स्वरूप में, जैसे मैं और मेरा बाबा, उसका अनुभव करो, सब उसी अनुभव में खो जाओ।
Thank you.
अपने चारों ओर लाइट का आभा मंडल अनुभव करो। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर से निकल अपने उस प्रकाशमय काया के बीच फरिश्ता ड्रेस पहनकर बाप दादा के बिल्कुल समीप अव्यक्त वतन में, लाइट के वतन में स्वयं को फरिश्तों की दुनिया में अनुभव करो। फरिश्ते विश्व के रक्षक हैं, हर आत्मा के स्नेही और सहयोगी हैं। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा इस पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दो। शांति शक्ति पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। हर आत्मा उस सहारे का अनुभव कर रही है। ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर बाप दादा के साथ विश्व कल्याण की बेहद सेवा के लिए मैं निमित्त आत्मा अनेक दुखी परेशान आत्माएं जो अपने इष्ट देव को याद कर रही हैं, पुकार रही, उन्हें अपना दिव्य स्वरूप अनुभव करा दो। सब पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, पूरी वंशावली को शक्ति देने वाली उन्हें गाइड करने वाली सही राह दिखाने वाली मैं पूर्वज आत्मा हूं। जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। अनेक आत्माएं मुझे फॉलो करने वाली हैं, इसलिए अपने संकल्पों पर, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों पर भी मुझ आत्मा का शासन है। मेरी सूक्ष्म वृत्तियां इस पूरे विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली हैं। अपनी उपराम वृत्ति से वैराग्य वृत्ति से अनासक्त वृत्ति से सर्वात्माओं की सेवा करो, सबको सकार दो। वृक्षपति बाप के साथ अपने तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर पूरे कल्प वृक्ष को शक्तियों का दान करूं।